झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, कर्णहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे।
ओम शांति, ओम शांति। पीछे वाले जरा हाथ लाओ, आवाज आ रही है लास्ट में? ठीक है। सबसे पहले हम आपको मुबारक दे रहे हैं। किस चीज की मुबारक दे रहे हैं? कि आप बिजनेसमैन हैं और बहनों को क्या कहेंगे, सिखानियां हैं। अच्छा, क्योंकि आज दुनिया को या देश को या अपने समाज को कौन चला रहा है? जबानी बातें करना, जमा खर्च करना और बात है, लेकिन सारे लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान या जो जीने की चीजें हैं वो कौन सप्लाई कर रहा है? बताओ। राजनेता कर रहे हैं, धर्म नेता कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, डॉक्टर, कौन कर रहा है? बिजनेसमैन कर रहे हैं ना। कितनी भी तरह के कानून बना दिया जाए, कितनी तरह के टैक्स लगा दिया जाए, जो कर दिया जाए, फिर भी हर बंदे के घर में जो जीने के साधन है वो कौन प्रोवाइड करता? बताओ, कोई और है सिवाय बिजनेसमैन के? हर कठिनाइयों को क्रॉस करके तो आप मुबारक के पात्र हैं कि नहीं है? अगर हैं तो जोरदार ताली बजाओ, असली असली। दूसरी बात के बिजनेसमैन क्या चाहता है? बिजनेसमैन को सबसे बड़ी प्यारी चीज क्या है आप जानते हैं? क्या है? कि छम 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 लक्ष्मी बरसे, और इतनी बरसे, इतनी बरसे। मान लो कि लक्ष्मी ही आपकी हो जाए, फिर क्या मामला है? लोग तो दिवाली के दिन लक्ष्मी के लिए दरवाजे खोलते हैं, सफाई करते हैं कि पड़ोसी के घर न गलती से चली जाना, ये घर ज्यादा साफ है। लेकिन मान लो लक्ष्मी आपकी हो जाए, इसलिए बिजनेसमैन चाहता है कि मैं जो बिल्कुल मूल जगह है जहां जीरो कीमत पे माल मिलता है वहां से लूं, और सबसे बढ़िया लूं जो कहीं ना मिले, और फिर उसको वहां सप्लाई करूं जहां उसकी बहुत जरूरत है। तो आज के जमाने में हर चीज, साइंस वाले भी, सब लोग बड़ी चीज को छोटी कर रहे हैं, छोटी कर रहे हैं, छोटी कर रहे हैं, छोटी कर रहे हैं, उससे भी छोटी कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन को परख होती है कि अकल बड़ी या भैंस। देखने में क्या लगता है? देखने तो भैंस बड़ी लगती है, लेकिन बड़ा क्या होता है? तो पहली बात यह है कि बिजनेसमैन धोखा नहीं खाना चाहता। अगर खुद ही धोखा खा लेगा तो आगे क्या होगा। तो रावण की लंका जो सोने की थी वो असली थी या नकली थी? उसका सोना असली था या नकली था? नकली था। तो अगर कोई रावण की लंका को असली सोने की समझ ले, द्वारका समझ ले, तो क्या होगा? धोखे में आ जाएगा। अब आप बताओ, कोई अनपढ़ व्यक्ति से पूछा जाए कि धरती जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है या सूरज धरती के इर्द गिर्द घूमता है, किसी अनपढ़ से पूछा जाए तो क्या जवाब देगा? हैं? सूरज घूमता है ना, सुबह वहां था, दोपहर को ऊपर था, शाम को नीचे चला गया, हम तो वहीं खड़े हैं। लेकिन किसी ज्योग्राफी के छोटे ज्योग्राफी पढ़े हुए से भी पूछा हो जाओ तो क्या कहेगा? उल्टा है। इसलिए आपको यहां इसलिए बुलाया गया है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ रियल चीज सप्लाई कर रहे हो। बिजनेसमैन को बहुत परख होती है। तो सबसे बढ़िया बिजनेस, सबसे बेस्ट बिजनेस जिसमें हिंग लगे ना फटकड़ी और क्या हो, रंग चोखा आए, वहां पर आप आ गए। अभी तो आप आए ही हैं, आज का दिन है। तो हम आपको थोड़ा सा टाइम हमें मिला, दो चार मोटी मोटी बातें सुना देते। पहली बात, दो चीजें हैं, एक है मैं और एक है मेरा, ठीक है? दो तो हैं। हर इंसान किसका फायदा चाहता है? बिजनेसमैन किसका फायदा चाहेगा, मैं का या मेरे का? मैं का, जिसको लोग कहते हैं स्वार्थ। पर आजकल हम स्वार्थी नहीं है, हम सारी जिंदगी बता देते हैं ये सोचकर कि मैं अपना फायदा कर रहा हूं, और कर रहे होते हैं मेरे का। सबूत क्या है? आपके अंदर दो चीजें हैं, एक तो बहुत छोटी सी ना दिखने वाली चीज है, उसको आत्मा कहते हैं, जिसके ऊपर आज आपको उषा बहन समझाएगी। और दूसरी मोटी ताजी चीज है, बड़ी, उसको कहते हैं शरीर, ठीक है? हमारे अंदर दो चीजें हैं, एक है पंखा, एक है बिजली। अच्छा, बिना बिजली के कितना भी बढ़िया पंखा हो चलेगा? अगर बिजली कमजोर है या बिजली आती जाती रहती है, पंखा कितना भी बढ़िया हो, तो असली ताकत कौन सी है? पहले तो व्यक्ति कोशिश करेगा कि मेरे घर में बिजली ऐसी आए। और आजकल आपको पता है बिजली के साथ जनरेटर ये वो कई कुछ लगाते हैं। तो जिंदगी में भी शरीर और आत्मा है। अब बताओ कि मैं कौन है और मेरा कौन है? मैं आत्मा हो गई, मेरा शरीर हो गया। दोनों में टेम्परेरी क्या है और परमानेंट क्या है? क्या ख्याल है आपका? हैं? वृक्ष क्या और बीज क्या है? वृक्ष बड़ा फैलता है, फल फूल देता है, ठीक है, लेकिन उसका मूल क्या होता है? बीज, जड़ भी नहीं, जड़ को भी पैदा करने वाला बीज। अगर भगवान आपको कहे कि दरख्त लेना है या बीज लेना है, तो श्रूड बिजनेसमैन क्या पसंद करेगा, जड़ या बीज? बीज, क्योंकि बीज से तो कई पेड़ निकल सकते हैं। आपके कोई कहे आम लेना है या आम का बीज लेना है, तो आम बीज से तो कई आम निकल सकते हैं, आम से आम नहीं निकल सकते। इसलिए गीता को सामने लाइए, भगवान के आगे दो बंदे आए, कहा भाई ले लो, मुझे ले लो या मेरी रचना को ले लो। तो जो ज्यादा अक्लमंद था उसने क्या किया? उसने कहा इतनी सारी सेना है, इतना सब कुछ है, जिसको कोई जीत ही नहीं सकता, ये क्या करेगा, हैं? मैं इसको ले लेता हूं। नतीजा क्या हुआ? कौन जीता? अच्छा, फिर आपको बीज भी मिल जाए। अगर आप बीज को बीज ही रखो और आप बीज को बो करके उसके फल निकालो, तो ज्यादा समझदार कौन हुआ? फल निकालने वाला, क्योंकि फल से फिर बीज अनेक निकल आएंगे, बढ़ जाएगा। तो व्यापारी ना सिर्फ धन चाहता है, ये भी चाहता है मेरा धन बढ़े। अच्छा, अब बढ़े तो किस स्पीड पे बढ़े? फटाफट बढ़े, धड़ाधड़ बढ़े, या धीरे धीरे बढ़े? हाँ, एक के दस करना, एक के सौ करना, और एक के पद्म करना, और एक के पद्मा पद्म करना, किसके हाथ में? भगवान कहता भाग्यशाली हो, सौ भाग्यशाली हो, पद्म भाग्यशाली हो, तो कौन सा ज्यादा भाग्यशाली हुआ? भाग्यशाली तो सारे हैं। इसलिए गोभी का फूल बो, एक गोभी उगेगी छुट्टी। मटर बोओगे तो अनेक मटर उगेंगे, लेकिन थोड़ा सीजन छुट्टी। और कोई पेड़ लगाओगे तो फिर क्या होगा? वो सीजन आफ्टर सीजन आपको फल देता रहेगा। तो अच्छा व्यापारी बताओ, गोभी बोएगा या पेड़ लगाएगा? ये सब आपको मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए एक होता भाग्य, भगवान ने भाग्य सबको दिया, एक उस भाग्य को बढ़ाना, और इतना बढ़ाना जो आपको इस जन्म से भी जन्म जन्मांतर जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप धरती में मिर्च बो दो, धरती में गन्ना बो दो, धरती वही है, उसी कुएं का पानी आ रहा है, ऊपर से सूरज चल रहा है, सब वही है। तो मिर्च क्या पैदा करेगी और गन्ना क्या पैदा करेगा? क्यों जी? हैं, मेहनत तो उतनी लगनी है, फल क्या निकला? अब ये बताओ, आप जो कुछ भी पापड़ बेलते हो सारा दिन, उसका फल क्या चाहते हो? फैला हुआ बहुत बड़ा किक्कर का पेड़, जिसमें कांटे ही कांटे निकले, देखने में बड़ा फैला हुआ, या छोटा सा फलदार पौधा, छायेदार पेड़, क्या चाहते हो जिंदगी में? अगर आपको ऐसा फार्मूला बता दिया जाए कि आप बिना मेहनत किए ही उस चीज को पालो, तो और क्या चाहिए? तो ये स्थान किस लिए है? यहां हम किस लिए हैं? यहां जितने लोग आते हैं वो किस लिए आते हैं? और इस स्थान में बिल्कुल अजमाइश किया हुआ, टेस्टेड और ट्राइड फार्मूला है, जो सारी दुनिया के लोग आज ब्रह्मा कुमारी में आते हैं। वो कोई धार्मिक शिक्षा लेने नहीं आते, धार्मिक शिक्षा उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि धर्म के बगैर आप अधर्म करेंगे तो किक्कर ही उगने वाला। लेकिन भाव उसका क्या है? धर्म का भी इंसान क्यों फॉलो करता? धर्म मैंने लॉ, नियम, नियम पे चलोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसलिए उस भाव से आप हमारी बात सुनिए। पहली बात के हमारे अंदर जो आत्मा है वो असल में क्या चाहती है? एक होता नकली, एक होता असली। नकली में कोई आदमी सारी दुनिया के लोन लेकर बहुत सारा बड़ा दफ्तर बना के बैठ जाए, देखने वाले को क्या लगेगा, बड़ा इसका बिजनेस चल रहा है। और कल वो सोचे मैं सारे उधार चुका करके मैं झोपड़ी में, अच्छा मेरे सिर पर बोझ ना हो, तो देखने वाले क्या सोचेंगे? इसका तो द्वाला निकल गया, बेचारा झोपड़ी में आ गया। और उस दिन खुशी खुश कौन होगा? झोपड़ी वाला। तो हमें ये भी देखना है कि हमें आखिरकार इस अडंबर से मिल क्या रहा है। अब हम आपको बताते हैं, इस दुनिया में जितनी चीजें हैं, चाहे वो जानदार हैं चाहे बेजान हैं, हर एक का एक खास गुण होता है जिससे उस चीज को पहचान होती, जिसके कहते ये चीज ये है। फॉर एग्जाम्पल बर्फ। अब बर्फ का क्या गुण होता है बोलो? हाँ, कई तो सो गए हैं, जैसे रूफ जा शरबत पी के सो गए हैं बर्फ, उनको तो असली गुण मिल रहा है बर्फ का। बर्फ का अभी मैं आग की बात भी करने वाला हूँ, एक्टिव रहो। बर्फ का क्या गुण होता है? ठंडा। ठीक है, बर्फ अपना दम मर्द अंत तक ठंडा करने की कोशिश करेगी। आप बर्फ का टुकड़ा रख लो, वो पिघलते पिघलते पानी बन जाएगा, लेकिन अपनी ठंड नहीं छोड़ेगा जब तक उसमें दम है। ठीक है, आग का क्या गुण है? गर्म करना। आप अच्छी वैक्स वाली दिया सलाई जला लो, आपका हाथ जलाने तक आ जाएगी, आग नहीं छोड़ेगी। ठीक है, सांप का क्या गुण है? ठीक, अब ये बताओ कि इंसान का, हम लोगों का क्या गुण है जिसके, जो मूल गुण है जिससे हम जाने जाते हैं। जिस गुण को आप धारण करोगे, आप कोशिश करोगे कि वो गुण मेरा बढ़े। जैसे आग होती है, वो क्या कोशिश करती है? हर चीज को हब करके मैं जलती रहूं। पानी होगा, वो कहेगा हर चीज को मैं बुझा दूं। तो हमारा मूल गुण क्या है? हर एक का है। आम का अपना गुण है, सेब का अपना गुण है, सूरज का। तो हमारा क्या गुण है? क्योंकि हमें तो अपने गुण से मतलब है। बताओ क्या गुण है? हैं? क्या करना? कर्म किस लिए? कर्म तो आग का गुण जलाना है, लेकिन किस लिए? बेसिक बात है, प्राप्ति हमारा वो गुण जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी खातिर हम जान देने को भी तैयार है, वो कौन सा है? तो आपको वैसे तो बहुत पूछेंगे तो बहुत जवाब आ जाएंगे। आप जितने भी गुण सोच लो कि हम ये चाहते हैं, उंगलियों पर गिन लो, पांच छह पूछ लेते हैं आपसे, बोलो जी एक शब्द में बताओ मेरी जिंदगी से मैं क्या चाहता हूं, एक शब्द में। दो चार जने बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आनंद, शांति, मोक्ष प्राप्ति किस लिए? सवाल यह है कि असली चीज बताओ। कोई कह मैं सड़क पे जा रहा हूं अहमदाबाद, किस लिए? हम अब वो पूछ रहे हैं जो आप चाहते हो, संतुष्टि, कंटेंटमेंट। ठीक है, और खुशी है, एक शब्द हैप्पीनेस। ठीक है, लो जी पांच चार हो गए। प्रेम किसी ने नहीं कहा, हो सकता बहुत प्रेमी बैठे हो। अच्छा अच्छा, अब देखिए आपने कहा शांति, आनंद, संतुष्टि, खुशी वगैरह वगैरह। अब ये बताओ ये चीजें आपके अंदर, दो चीजें हैं शरीर और आत्मा, ये किसमें हैं? शरीर में है या आत्मा में? ये पक्की तरह नोट कर लो, क्योंकि बहुत जरूरी बात हम कर रहे हैं। जितनी चीजें कोई चाहता है वो आप सोच लो वो किसमें हैं, आपको पता लग जाएगा कि मेरे में है या मैं में है। ठीक है, आप बहुत बढ़िया कार खरीद लो, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन कार किस लिए होती है? आपको कहीं ले जाने के लिए ना। तो असल तो यात्री को कहीं ले जाने के लिए कार है, या कार बढ़िया और वहीं खड़ी रहे तो आप खुश हैं? इसलिए आपने देखना है कि ये शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, जो भी आप करते हो, ये तो मीडियम है, इसके द्वारा करने वाला कौन है और उसका सुख दुख लेने वाला कौन है? तो आप पाओगे आत्मा। ठीक है, आंखें देख रही हैं या आत्मा देख रही है? सोचो, आंख आत्मा किसी को देखती है, जिस नजर से आत्मा देखती है वो आपको अनुभव होगा, जो जो आंखें देखती है वो होगा। आज कोई व्यक्ति आपका दोस्त है, आप समझते ये तो मेरा बड़ा पक्का गहरा दोस्त है, मेरा कभी नुकसान नहीं कर सकता, आंखें देख रही हैं। शाम को कोई बता दे, अरे ये तो तुम्हारा आस्तीन का सांप है, तुम्हारी जड़ें खोद रहा है, अगले दिन वो आएगा आंखों से तो आप उसी को देखोगे, लेकिन आपका व्यवहार कैसा होगा? आओ या कहोगे जाओ? इसलिए यहां पर मोटी बात, ये गीता की बात है, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ हम गीता पढ़ते हैं उसको फॉलो नहीं करते। तो मोटी बात क्या है, चाहे किसी धर्म में ले लो, रूह आत्मा की बात की गई। अच्छा, आपने जन्म लिया, ठीक है, हर एक ने जन्म लिया, अपने अपने घर तरह के घर में लिया, किसने लिया? आत्मा ने लिया, शरीर ने लिया? शरीर तो यहां मिला, और किस तरह का लिया, जैसी आत्मा थी है? कोई खराब आत्मा थी तो घटिया जगह जन्म मिल गया, किसी को उम्र कम मिल गई, जो भी था तो बेस तो आत्मा ही हुआ ना, बाकी चीजें तो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए अगर आप आत्मा के ऊपर जाओ, आत्मा का ध्यान रखो, तो आपका मोटा काम जरा सी मेहनत से हो जाएगा। शिव जी के दो बच्चे दिखाए जाते हैं, एक था गणेश और एक था कार्तिक। उसने कहा कि जो सारी दुनिया का चक्कर लगा के आएगा उसको मैं अपनी जायदाद दे दूंगा। तो कार्तिक ने क्या किया, चल पड़ा जल्दी से, और गणेश ने क्या किया, बैठा लड्डू खाता था। अच्छा, जब उसने देखा कार्तिक घूम घाम के बड़ी मेहनत करके दूर आ गया है, तो उसने उठकर एक शिव जी का चक्कर लगा लिया, बैठ गया। तो कार्तिक ने कहा लाओ जी। उसने कहा क्यों, मैंने तो मालिक का ही चक्कर लगा लिया छुट्टी, तो कौन बादशाही किसको मिली, गणेश को। इसीलिए कहा जाता है अकल बड़ी के भैंस। अब आपने ये देखना है आत्मा का असली गुण क्या है, और बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, आप क्या ढूंढ रहे हैं, हमने आपसे पूछा था एक शब्द बताओ, पर ठीक है आपने पांच छह बताए। अब पांच छह में से ये देखो किसका उल्टा है किसका उल्टा नहीं है। शांति का उल्टा है कि नहीं है, सुख का उल्टा है, संतोष का उल्टा है, और क्या बोला था है? संतुष्टता का उल्टा है, मैं बड़ा सा आनंद का उल्टा बताओ। ये किसी ने आनंद भी कहा था। हैप्पीनेस का उल्टा अनहैप्पीनेस, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है, क्योंकि आत्मा का असली स्वरूप आनंद है। जब उसको छोड़ देती है तो हैप्पीनेस मांगती है, और छोड़ देती है चलो संतुष्टि ही सही, और छोड़ देती है चलो शांति ही सही। शांति को स्टेज नहीं, जीरो है शांति में, नहीं ना दुख ना सुख। आप कितनी देर शांति में रह सकते हैं, या तो दुख में जाओगे या सुख में, डिटेल में नहीं जाते। आप आत्मा हैं, और आपका ओरिजिनल नेचर, जैसे गुलाब के फूल का ओरिजिनल नेचर खुशबू है असली वाले का, वो कभी खुशबू नहीं छोड़ेगा। आप गुलाब के फूल को हार में डाल दो, गुलदस्ते में डाल दो, कूड़े में डाल दोगे, तब भी वो खुशबू नहीं, को नहीं कहेगा जी मैं कूड़े में पड़ा हूं तो मैं खुशबू नहीं देता। और हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने अपने असली गुण में नहीं रहते, हम फटाफट जैसा मौका देखा। अब बताओ, पानी को आग में डाला जाता है बुझाने के लिए, पानी कह जी मैं तो आग को नहीं बुझाता, तो हो गई छुट्टी, आग बढ़ेगी। इसलिए यहां पर मूल बात सिखाई जाती है कि आपके ओरिजिनल गुण को अगर आप जिएंगे तो आपको और दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। पानी भी पहाड़ों को भी धीरे 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 रास्ता बना लेता है। हवा है वो जगह जहां जो अपना रास्ता बना लेती है। आकाश तो आपके मुंह में भी आ जाता है, लेकिन ये मिट्टी जो है ये मोल्ड नहीं होती, इसको दूसरे मोल्ड करते हैं। तो शरीर आपकी मिट्टी है, आत्मा आप हैं। अब आपने फैसला करना है कि हम आत्मा बनके जीना चाहते हैं या शरीर बनकर। क्यों जी, यहां यही फैसला होना है। अगर आप शरीर बनके जियोगे, पहली बात कितनी देर जियोगे? जैसे कोई अपनी कार को सजा रहा है, या होटल वाला बाहर से पतीला साफ कर रहा है, चमकाता रहता है, अंदर क्या होता है। इसलिए आज आप देख लो, हम हिंदुस्तान भारत के रहने वाले, देवताओं को मानने वाले, दुनिया हमको ऊंचा देखती है, और आज हम शरीर बन के जी रहे हैं। आपका नाम पूछो, आप कौन सा नाम बताओगे जी, कौन सा नाम बताओगे? पिछले जन्म में आपका ये नाम था, अगले में ये होगा नहीं होगा? आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, आपका सर्टिफिकेट, आपका बैंक, दुनिया भर की जो चीजें हैं किस नाम से हैं, शरीर से या आत्मा से? तो बस शरीर गया छुट्टी। तो आप देखिए कि कोई व्यक्ति असली चीज को तो ड्राइवर तो को तो होशियार ना करे, और कार बढ़िया लेता जाए, आखिर क्या होगा? तो एक्सीडेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कौन व्यक्ति चाहता है सुबह उठता है कि मैं दुखी होकर आऊं, शाम को मैं इतना सारा सुख लेके आऊंगा, चल पड़ता है रोज, फिर क्या होता है? शाम को थैला खाली, क्यों? सारी मेहनत की, सब किया, अच्छा कुछ इकट्ठा भी किया, वो अपने काम नहीं आता। ज्यादातर बिजनेसमैन को देखो, कहेंगे जी मुझे शुगर की बीमारी होगी, मेरे हार्ट की बीमारी होगी, हैं? अच्छा अब सेठ जी कार में जा रहे हैं बंगाली मार्केट दिल्ली में, ड्राइवर कहते ठहरो जी जरा रसगुल्ले खा रहा। सेठ जी सारी दुकान खरीद सकते हैं, पर डॉक्टर ने क्या कह रखा है? हाँ? जीना है तो हाथ नहीं लगाना। तो कितना दुख होता होगा सेठ जी को, ये देखो नलायक ये फटाफट रसगुल्ले खा रहा है, मेरा ड्राइवर और मैं, मक्खन को तो हाथ ही नहीं लगाना। अच्छा अब श्री कृष्ण जी को क्या दिखाते हैं कि मक्खन उसके मुंह का लगा हुआ, तो वो भी कोई हम लोग ही थे ना, आज क्या हो गया? इसलिए हमको जब तक हम अपनी मूल को, जड़ को और बीज को सेट नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, हम भी ब्रह्मा कुमारी में इसीलिए आए, दुनिया के हिसाब से तो हम ठीक ठाक थे, पर हमने देखा पैसा है तो शरीर ठीक नहीं है, शरीर ठीक है तो मन ठीक नहीं है, मन ठीक है तो परिवार ठीक नहीं है, परिवार ठीक है तो कोई ऊपर से कोई भूचाल आ गया, कोई जेब काट के ले गया, कोई एक्सीडेंट कर गया, आखिर क्या मामला है? भगवान ने हमें ऐसी दुनिया में भेजा क्या? सोचने की बात है। वो कहते हैं परमात्मा ने हमको अपनी छवि में बनाया, और ऐसे सैंपल हैं जिनको हम जाके पूजा करते हैं, मंदिर में मूर्तियां खड़ी हैं, अब वो तो मूर्तियां ही हैं, लेकिन किसी की होंगी जिसको हम लोग जाके अपने रिश्तेदार भी गिनते हैं, नाम भी रखते हैं। अच्छा फिर हमने क्या किया? लक्ष्मी को अलग कर दिया, सरस्वती को अलग कर दिया, दुर्गा को अलग कर दिया, पैसे को लक्ष्मी गिनने लग गए। अब किसी के पास बुद्धि ना और पैसा आ जाए तो कहां तक चलेगा? बुद्धि और बेचारा फाके काटे तब भी कहां तक चलेगा? और दोनों चीजों को ताकत ना हो तो भी कोई लूट के ले जाएगा। तो ये तीनों क्वालिटी इकट्ठी होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? तो ये भी प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर रहे हैं? पैसे के पीछे, तो बहुत पैसा इकट्ठा कर लेंगे, हमारे सामने हमारे बच्चे, हमारे जुआई उसको उड़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं मजबूर होकर, हाय हाय, तो फायदा क्या हुआ? इसलिए इंसान को लंबी उम्र भी चाहिए, इंसान को हेल्थ भी चाहिए, इंसान को धन भी चाहिए, और इंसान को अच्छे संबंध भी चाहिए, और कुदरत भी बढ़िया चाहिए, नहीं तो कुदरत लूट के ले जाएगी। ये सारी चीजें क्यों नहीं होती? क्योंकि बीज की बजाय हम बीज को सींचने की बजाय, बीज को ताकतवर बनाने की बजाय पेड़ को ताकतवर बना दें। अब क्या इरादा है आपका? हाँ? ये यहां पर बिजनेस सिखाया जाता। तो पहली बात, जब तक कोई भी इंसान, आप में से कोई भी ट्राई करके देख लो, आप तो अनुभवी हैं, जिंदगी में बहुत ट्राई किया होगा, जब तक कोई भी इंसान अपने आप को शरीर मानेगा, पहली बात कि वो टेम्परेरी चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, शरीर तो आज गया कल गया, आप मरे जग पर लो, ठीक है? तो कोई बिजनेसमैन ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा जो शाम को सब लूट के ले जाए कोई? ये गीता में भी लिखा हुआ कि तुम आत्मा हो, 10 बार भगवान ने कहा तुम आत्मा हो, क्यों कहा? सिख लोग कहते हैं अकाली, अकाली का मतलब होता है जिसको काल ना खाए, आत्मा। तो ये तो हमारा चोला है, तो हम चोले को ठीक ठाक करें, चोले की तो वैसे ही कोई लाख जतन कर ले, क्या चोला पुराना नहीं होगा? क्या चोला बीमार नहीं होगा? क्या चोला का छूटेगा नहीं? तो अब ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जा रहे हो जिसने नैया ने डूबना ही डूबना है, तो करके देख लो, और सबने देखा है, इसलिए यहां आपको बुलाया गया। अच्छा दूसरी बात, जब कोई इंसान किसी सही रास्ते से हटता है तो उसका फल तो भोगना पड़ता है कि नहीं? हमने शरीर मानना शुरू कर दिया तो फल क्या हुआ उसका? जो चीज हम नहीं हैं वो हम अपने आप को मान रहे हैं, जो हम हैं वो अपने आप को नहीं मान रहे हैं, तो फल तो होगा। अब कोई चौक से उल्टे रास्ते चल पड़े, चौक में आ गए, आपने जाना है ग्वालियर और आपने असम की सड़क पकड़ ली, जितना भी तेज भागोगे अपनी मंजिल से दूर जाओगे या नजदीक। तो हम क्या कर रहे हैं, तेज भाग रहे हैं, लाख है तो 10 लाख इकट्ठा करें करो, ये नहीं देख रहे कि भैया तेरी मंजिल क्या है। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि जब मंजिल से दूर भागते हैं, किसी चीज में भी कोई उल्टा काम करेंगे तो उल्टा फल निकलेगा। अब क्या हुआ, जब हमने अपने आप को शरीर मानना शुरू किया तो जैसे किसी कमजोर चीज में, किसी फल के अंदर, किसी भी चीज में वायरस या कीड़ा या खराबी घुस जाती है, वो घुसेगी और दुनिया ठीक होती जा रही है और आत्मा कमजोर होती जा रही है। आप तो बिजनेसमैन है, आप जानते हैं, आज किसी स्टोर में चले जाओ क्या हो रहा है, डब्बियां बहुत शानदार, फ्रेश गार्डन, फ्रेश फलाना, फ्रेश है जी, और इतना बड़ा ड्राई फ्रूट का डब्बा आपको देंगे, अंदर क्या निकलेगा, सब जानते हैं कि कौन सा माल इसमें भरा हुआ है। अच्छा, हर चीज में क्वालिटी खत्म और शो ज्यादा, तो लावण की लंका हो गई। अब क्या हुआ कि ऐसा करने से हमारे अंदर 5 खराबियां आ गई, शॉर्ट कर रहा हूं मैं, 5 खराबियां क्या आ गई, जो जिसके अंदर वो खराबियां होंगी, चाहे वो चीफ जस्टिस बन जाए, चाहे वो बिरला सेठ बन जाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उसको सुख मिलने वाला नहीं। वो 5 खराबियां क्या हैं, सब जाग रहे हैं या सो रहे हैं, अच्छा पीछे वाले भी जाग रहे हैं, अच्छा वैसे तो हमें अपनी खराबियां बयान नहीं करनी चाहिए, पर इलाज कराने के लिए तो बताना पड़ता है, डॉक्टर जी ये प्रॉब्लम है, नहीं तो कहेगा भाई तेरे को तकलीफ क्या है। तो पहली खराबी है अभिमान, अभिमान, ठीक है, अभिमान आप जानते हैं, पाप मूल अभिमान कहा गया है, कुछ भी नहीं मैं, ये कल का भरोसा नहीं मैं, ये तो अभिमान के कारण पारिवारिक संबंध, दोस्ती मित्रता सब जा रही, इंसान इंसान नहीं रहा, अभिमानी हो गया, वो सुख वो प्रेम वो इंसानियत खत्म। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप समझ सकते। दूसरी बात गुस्सा क्रोध, अब आपने चाहते आप शांति हैं, चाहते आप संतोष हैं, चाहते आप सुख हैं, चाहते आप आनंद हैं और कर रहे हैं गुस्सा, तो क्या होगा जी, क्या होगा। फिर और ज्यादा अपने आप को सिद्ध करने के लिए हमारे देवताओं में भी गुस्सा था, फलाने में भी गुस्सा था, शंकर जी में भी गुस्सा था, परशुराम में भी गुस्सा था, ताकि खराबियां करते रहे बुजुर्गों का नाम लेकर। ये किसी ने नहीं कहा कि देवताओं में क्रोध नहीं होता, देवताओं में अभिमान नहीं होता, ठीक है। तीसरी लालच, तो क्या लालच को तो आप बिजनेसमैन अच्छी तरह जानते हैं, हैं? कि माखी गुड़ में पड़ गई, पंख ले और लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। अब लालच करते जाओ करते जाओ, जैसे रेशम का कीड़ा धागा निकालता जाता है, अरे भैया उसको काम में भी तो लाओ जो चीज तुम्हारे पास है। अब मान लो मैं आपको कहूं कि अगर भगवान आपका वजन 10 गुना कर दे शरीर का, कौन तैयार होगा जी, आप में से कोई तैयार है कि मेरा वजन 10 गुना कर दिया जाए, आजकल कोई तैयार होता है। अगर कोई कहे आपका धन 10 गुना कर दिया जाए तो सब तैयार है। दोनों चीजें एक जैसी, वो भी बोझ है वो भी बोझ है फालतू का, लेकिन हम समझते हैं कि बोझ नहीं है, किसी भी चीज का एक्स्ट्रा होना वो बोझ है, आप उसको कैरी ओवर करते रहोगे करते। आपके पास 1000 जूते हों, जैसे कई फिलीपींस की वो लेडी के पास थे, तो क्या काम है, छांटते ही रहोगे, ये पहनू या ये पहनू, ये पहन लिया तो नहीं, तो चिंता ही होगी ना, उसको संभालने की भी चिंता। तो इसलिए कोई पहलवानी शुरू कर देता कि अच्छा, पहलवानी से फिर क्या होता है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, दूसरे को मारना शुरू कर देता। तो इसलिए काम सबसे बुराई है, काम देवताओं में काम नहीं था, अर्थात उनकी नजर शुद्ध थी। और आज की सबसे बड़ी खराबी क्या है, आज महिलाओं से पूछ लो, माताओं से पूछ लो, बहनों से पूछ लो, आज हमारे देश में जो देवताओं का देश था उसमें सबसे बड़ी शर्मनाक चीज, आंख नीचे करने वाली चीज क्या है आप जानते हैं? बुरी नजर। हर ट्रक के पीछे लिखा होता है क्या? अच्छा, और अगर सचमुच ऐसों का मुंह काला करने लगे तो पेंट ही खत्म हो जाए काला। अच्छा, अब क्या करे, करा जाएगा? आगे तो दो चार होते थे समाज में, उसका निरादर होता था, आज तो नहीं है। इसलिए वो देवताओं की दुनिया जहां महिलाओं का सम्मान था, कहा जाता है किसी भी समाज का स्टैंडर्ड देखना हो तो उसमें ये देखो कि नारी का कितना सम्मान है, अर्थात उसकी इज्जत आबरू की कितनी रक्षा है। द्रौपदी का चीरहरण होने के कारण महाभारत होगी, आज कोई करता है? अब नेताओं को और चीजों की चिंता है कि ये बना दो, स्कूल बना दो, फलाना बना दो, सड़कें बना दो, कश्मीर ले लो, फलाना ले लो, लेकिन आपके घर में क्या हो रहा है, आपके एमपी क्या कर रहे हैं वो भी सब जानते, कोई नहीं बोलता। अब भगवान कहता है कि मेरे पास आवाज आती है, भारत देश तो काम विकार वो भी बॉडी कॉन्शियस से पैदा होता है। आप आत्मा समझेंगे तो आत्मा के रूहानी नाते से नहीं होगा, हमारे पूर्वजों में नहीं था, देवताओं में तो बिल्कुल नहीं था। इसलिए और आप देखेंगे आज इस काम विकार को भड़काने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। आपने कोई चीज बेचनी हो तो महिला का फोटो दिखाएंगे, आप देख लीजिए कितने गंदे गंदे वो कहानियां बना रहे हैं, तो ये देश नरक में चला गया। अब भगवान कहता है कि उभरना है, केवल दुनिया में एक ब्रह्मा कुमारी संस्था है, हम फखर से कहते हैं, जहां पर महिलाओं की रिस्पेक्ट होती है। और ये जरूरी नहीं है कि महिलाओं को बुरी नजर से देखा जाए, आप मंदिर में जाके लक्ष्मी जी को देखते हैं, पार्वती को देखते हैं, सीता को देखते हैं, आपको कभी बुरी नजर जाती है? नहीं। और आके किसी बोर्ड पर सिनेमा के एक्टर को देखो तो जाएगी। तो इसलिए वो जो है कि उनके अंदर क्या चीज है, सुंदरता कोई खराब चीज नहीं है, शिव के लिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांच विकार हैं, ये कलयुग में कोई इससे मुक्त है ही नहीं। और अगर आप गौर से देखोगे, किसी कचहरी में चले जाओ, जितने मुकदमे हैं उसके पीछे क्या होगा, ये पांचों में, इसके आउटसाइड कोई लिटिगेशन होता ही नहीं। घर में आ जाओ, जितने फसाद हैं उसके पीछे यही है और कोई होता नहीं। समाज में चले जाओ, लोग कहते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार सबके पीछे। अब बताओ कि किसी सेब बहुत सुंदर हो, अंदर उसके कीड़े हों, आपको क्या फायदा होगा? तो आज समाज में ये हो रहा है। तो भगवान कहता है अपने बचाव के लिए, और दूसरों सिंपल फार्मूला है कि पहले तो सच पर चलो, और सच क्या है कि मैं आत्मा हूं, ठीक है? तो सच पर चलने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीजें दुख देती हैं आपको, और कोई चीज दुख नहीं देती। भगवान ने कहा हुआ है आत्मा अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। अगर आपने अपने को शरीर मान लिया तो ये पांच जरूर आएंगे और आपको दुख देंगे। दुख का और कोई कारण नहीं है, देवताओं की दुनिया में सुख था ये नहीं थे। ये ब्रह्मा कुमारी में आप घूमते हैं, सबके चेहरे खुश नजर आते हैं, और किस चीज से आते हैं? ये लक्ष्मी सिर्फ रुपया नहीं होता, गुणों को भी लक्ष्मी कहते हैं। तो यहां पर पहली बात धैर्यता, धैर्यता एक गुण है। धैर्यता का मतलब क्या होता है? धीरज रखो। आज धैर्यता है, हैं? आज लिफ्ट मंजिलों की बिल्डिंग में लिफ्ट लगो तो सात दुकान होती है कि बेचारे लिफ्ट जब तक आए बेचैन हो जाते, चॉकलेट खाना शुरू कर देते। और धैर्यता का ये हाल है, एक व्यक्ति ने कहा भगवान गॉड गिव मी पेशेंस, भगवान मुझे धैर्यता दो पर जरा जल्दी करो, ये हाल है। तो धैर्यता है, ठप 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 जिसको देखो पता नहीं भागा जा रहा है, और क्यों भागा जा रहा है, नतीजा क्या, कुछ भी। दूसरा नम्रता, जो ईगो अभिमान का उल्टा है। आपका क्या जाता है, जरा नरम रहो। नहीं, और वो बॉडी कॉन्शियस के कारण मेरा इतना पैसा है, मेरा ये है, मैं फलाना हूं। धैर्यता, नम्रता, मधुरता, पवित्रता, ये सत्यता से आती है। और सत्य क्या है, पहला सत्य ये है जो गीता के शुरू में लिखा हुआ है, आप अभी भी देखकर टेस्ट कर सकते हो। पहला सत्य ये है, मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है बस। अच्छा, मान लो आपको समझ में आ गया मैं आत्मा हूं, तो आज से आप क्या करोगे? हैं? आत्मा तो शरीर के अंदर ही है ना, दिखती तो नहीं है। केवल आपको आत्मा मान के चलना है। आप बैठे हो, बैठे रहो, आत्मा ने शरीर को बिठाया हुआ है। उठो, आत्मा ने शरीर को उठाया। चलो, आत्मा शरीर को चला रही है। खाना खाओ, आत्मा शरीर को खाना खिला रही है। नहाओ, आत्मा, बस इतना ही करना है। क्या मुश्किल काम है? तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, अभी पता नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे छाछ के अंदर मक्खन होता है, मिक्स है, लेकिन जब आप रोज रोज करोगे तो छाछ के अंदर से मक्खन जब एक बार रिड़क लो तो क्या होता है, मक्खन ऊपर आ जाता है, देखने में मोटा लगता है, तैरता है। और उस मक्खन का जरा सा टुकड़ा दोबारा छाछ में मिला के दिखाओ, मिलेगा खास के अंदर। इसी तरह से अगर आप आत्मा 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 अभ्यास करते रहोगे, थोड़ी देर के बाद आपको पता लगने लग जाएगा कि मैं आत्मा इसको चला रही हूं। अभी ये आपको चला रहा है, घोड़ा जो है सवार को घुमा रहा है, इतना ही फर्क है। इसलिए यहां पर ये बहुत मूल ज्ञान मिलता है। और क्योंकि हमें बहुत जन्मों से शरीर मानने का अभ्यास हो गया है, तो आत्मा कमजोर हो गई है। आपको समझा भी दिया जाएगा तो भी कुछ, शाम को आप जाएंगे कोई अच्छी ड्रेस देखी या कुछ, तो शरीर के लिए है ना, तो कहेंगे तो भैया आत्मा गई। इसलिए भगवान कहता है आत्मा को शक्ति चाहिए अंदर से मालिक बनने की। एक मालिक जब बहुत सालों के लिए गुलाम रहता है तो उसमें गुलामी के संस्कार पड़ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, राजा के बच्चे को भेड़िए उठा के ले गए, अब वो भेड़ियों की आवाज बोलने लग गया, भेड़ियों की तरह चलने लग गया। एक बारी उसके सैनिकों ने देखा है तो राजा का बच्चा ले आए, अब राजा कहे पलंग पे सो, वो हूं करे राजा, क्योंकि उसको आदत बिगड़ गई थी। तो भगवान कहता है दूसरी बात है योग। गीता के अंदर दो ही बातें हैं, एक ज्ञान और एक योग। योग का मतलब क्या है, जैसे आप रोज अपने मोबाइल को चार्जर से लगाते हो तो मोबाइल काम करता है। हम सब बैटरियां हैं, इस वक्त हमारी बैटरी डाउन है। बैटरी डाउन पर कितना भी अच्छा कोई बात करना चाहे नहीं कर सकता। तो आत्मा क्योंकि भूल गए हैं, आत्मा कमजोर हो गई है, आत्मा को इन पांच चीजों ने, बीमारियों ने जकड़ लिया है। इन पांच बीमारियों की कोई गोली दवाई नहीं है कि आपको कोई गोली खिलाए आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, आपको कोई सिरप पिलाए तो लोग, ऐसा नहीं है। ये सूक्ष्म बीमारियां हैं, और योग लगाने से, परमात्मा को याद करने से ये ताकत आएगी आत्मा में। शरीर में फलों से ताकत आ सकती है, सैर करने से ताकत आ सकती है, पर आत्मा में ताकत इन चीजों से नहीं आ सकती। और आत्मा तक सिर्फ संकल्प पहुंचता है। तो संकल्प का मतलब क्या, आप देखोगे आप जिस चीज का ध्यान करोगे आपके अंदर वैसे ख्याल पैदा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। मान लो आप अकेले बैठे हो, कोई बहुत अच्छी चीज सोच रहे हो, तो आपके चेहरे पे क्या आ जाएगा, खुशी आ जाएगी। अभी हम आपको कहें कि अपनी जिंदगी की बहुत अच्छी चीज सोचो तो क्या होगा, थोड़ी देर में आपके फोटो लिया जाए तो सब मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि कहीं और है। अच्छा, कोई आएगा कहेगा, उसको पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, जी आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, चेहरा बताएगा। अच्छा, इसी तरह से आप किसी से फोन पर बात करते हो तो अलग अलग तरह वो जो भी जिससे आप बात कर रहे हो उसी के अनुसार आपके खुशी या गम आएगा। किसी ने उधार देना है, वो कह रहा है भाई कब देगा, तो आपकी टोन क्या होगी, लेने वाले की क्या होगी, देने वाले, भाई तूने बहुत बार कहा है कब तक देगा? वो गिड़गिड़ाएगा, जी 15 दिन और दे दीजिए, आवाज में फर्क है, दिख तो नहीं रहे। इसी तरह से किसी ने छुट्टी मांगनी हो दफ्तर से, तो ऑफिसर सर वो कहेगा तुम हवा का छुट्टी लेता है। तो ये भावना मन से आती है। तो इसी प्रकार से आज हमारे मन में कैसी भावनाएं आ रही हैं, आप देखो, आदत ही पड़ गई है खराबी देखने की। आप देख लो, किसी को देखेंगे ना तो और 10 बातें उसकी छोड़कर, क्योंकि ऐनक लगी हुई खराबी देखने की, हर चीज में इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है। अब हमारे यहां भगवान कहता है कि मैं जन्म नहीं लेता हूं, ठीक है, भगवान जन्म लिया तो भगवान नहीं हो सकता, और जब तक भगवान आए ना तो शिक्षा नहीं दे सकता। तो गीता में क्या लिखा हुआ है कि भगवान कहता है मैं मनुष्यों की तरह माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, नहीं तो मुझे मरना पड़ेगा, किसी को माता पिता कहना पड़ेगा, मैं अवतार लेता हूं, ठीक है, लिखा हुआ है। अवतार का मतलब क्या है कि जन्म की तरह जन्म नहीं लेता। तो वो कहता है कि मैं प्रकृति को अधीन करके, पर काय प्रवेश करके, किसी का आधार लेके उसके मुख से ज्ञान देता हूं। गीता में भगवानोवाच भी है और ये भी है कि किसी के रथ में सवार है, वो रथ उन्होंने दूसरा बना दिया, और है शरीर का रथ, क्योंकि शरीर भी रथ है। आप देखेंगे जब कोई मुर्दा जा रहा होता हम कहते हैं अर्थी जा रही है, अर्थात इसका रथी निकल गया, आत्मा रथी है। तो परमात्मा किसी, क्योंकि कलयुग में आना है, दुख की दुनिया में आना है, लोगों को ज्ञान देना है, कृष्ण जी के रूप में आ नहीं सकते, देवता कैसे आएगा? अगर कृष्ण जी यहां सांस ले लें, हम लोगों ने अपने घरों में प्योरीफायर लगाए हुए हैं तब सांस लेते हैं, वो तो छुट्टी कर जाएंगे, वो आते ही नहीं। तो इसलिए भगवान कहता है मैं साधारण तन में आता हूं। गीता में ये भी लिखा हुआ है कि बूढ़े ब्रह्मा के तन में आता हूं। ब्रह्मा को स्थापनाकर्ता बताया गया है, भगवान अलग है, तो वो आके ज्ञान देता है। तो लोग क्या कहने लग जाते हैं कि अपने गुरु को भगवान कहते हैं, ये ब्रह्मा जी को, हम किसी ब्रह्मा को कोई भगवान नहीं कहते, हम अपने आप को भी शरीर नहीं गिनते, हम ये गिनते हैं शरीरधारी ज्यादा से ज्यादा देवता हो सकता है, परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो ये कन्फ्यूजन है। अच्छा, आपको आम खाने या पेड़ गिनने, आपने उसका ज्ञान का लाभ लेना या कैसे आता है, क्या आता है, तो इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है, किसी को इस प्रकार का कन्फ्यूजन हो अलग से आके क्लैरिफाई, हमने भी तो किया है। जितने लोग ब्रह्मा कुमारी में आते हैं उसमें अंग्रेज हैं, चाइनीज हैं, फलाने हैं, वो अपना लाभ देख के आते हैं, आत्मा का ज्ञान और आत्मा को शक्ति लेने का तरीका जान के आते हैं, और आप करोगे आपको तुरंत फायदा मिलेगा। इसलिए उस चक्कर में ना जाकर आप आए हैं, श्रूड बिजनेसमैन है, आप बीज को पकड़ेंगे तो आपका भी आत्मा बीज शक्तिशाली हो जाएगा। फिर देखना आपकी सतयुग में जो नई दुनिया भगवान बनाता है, पूरी उम्र ग्रंटेड, कोई बे टाइम मरेगा नहीं, और आज भी इसकी निशानी है, क्योंकि बहुत बूढ़ा होकर शरीर छोड़ता है तो उसकी अर्थी वर्थी रोना पीटना नहीं करते, उसका विमान सजाते हैं, पतासे बांटते हैं, वो किसी किसी का करते हैं, वो भी बेचारा दुखी होता है। लेकिन हम लोग उस देश के हैं जहां आत्मक शक्ति से सारा जीवन चलता था, तो वो ज्ञान यहां पर दिया जाता है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और बिना किसी कॉस्ट के आप अपनी बुराई को ठीक कर सकते हैं, दैवी गुण धारण कर सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारी उषा बहन जी आ रही हैं, वो इसी बात का आपको अनुभूति कराएंगे। ओम शांति।